पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
अर्पा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान।
सपनों को हकीकत में बदलना नामुमकिन नहीं। सुनते रहिए उच्च शिक्षा आपके द्वार।
नमस्कार, भारतीय दर्शन की कड़ी में आज हम मीमांसा दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ वेद के दो भाग माने जाते हैं, एक को कर्मकांड और दूसरे को ज्ञानकांड कहते हैं। कर्मकांड या पूर्व भाग की समीक्षा होने के कारण इस दर्शन को पूर्व मीमांसा या मीमांसा कहा गया। मीमांसा का अर्थ समीक्षा करना है। मीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हैं। जैमिनी के सूत्र पूर्व मीमांसा कहलाते हैं। इनका उद्देश्य वस्तुतः वैदिक कर्मकांड के संबंध में निर्णय देना है। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न होता है और ज्ञान का पर्याय है। विदंति अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद ज्ञान का साधन है। वेद उसी पदार्थ का बोध कराता है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का विषय नहीं है। इसलिए मीमांसक विद्वान वेद की सार्थकता अज्ञात रहस्य के प्रतिपादन में मानते हैं। मीमांसा वेद को अपौरुषीय तथा नित्य मानते हैं। उनका कोई रचयिता नहीं है। किसी ग्रंथ में दोष रचयिता की कमियों से आते हैं। चूँकि वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, इसलिए वे दोष से रहित हैं। वेद या वेदों का प्रकाश ऋषियों द्वारा हुआ है। मीमांसा दर्शन में प्रमाण संबंधी चिंतन मुख्यतः यह सिद्ध करने के लिए किया गया है कि वेद या श्रुतियाँ प्रमाणिक हैं। विशेषतः मीमांसकों का स्वतः प्रामाण्यवाद वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करने के लिए अपनाया गया है। वेद जिसका विधान करे वह धर्म है और जिसका निषेध करे वह अधर्म है। अन्य दर्शनों की भांति मीमांसा दर्शन भी आत्मा को शरीर से भिन्न एवं अमर स्वीकार करता है, किंतु इसमें वेदांतियों के समान आत्मा को चैतन्य रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इनके अनुसार चैतन्य की उत्पत्ति शरीर के साथ आत्मा के संयोग से होती है। विशेषतः जब किसी विषय का ज्ञानेंद्रियों के साथ संयोग होता है तब चैतन्य की उत्पत्ति होती है। मुक्त आत्मा विदेह तथा चैतन्य शून्य होती है, तथापि उसमें चेतना की शक्ति रहती है। आत्मा जब देह युक्त रहती है तब उसे अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। मीमांसा दर्शन जगत को मिथ्या नहीं मानता है। यह दर्शन वस्तुवादी या बाह्यार्थ सत्यवादी है। जगत की सृष्टि करने के लिए शक्ति कर्म में है, उसमें ईश्वर का अधिकार नहीं है। कर्म की अपनी स्वतंत्र शक्ति होती है जिसे अदृष्ट या अपूर्व कहते हैं। वही जगत का संचालन करती है। कर्म स्वयं अपना फल देता है। कर्म फल की प्राप्ति ईश्वर से नहीं होती है। वेदांत दर्शन का मत है कि मुक्ति का साक्षात साधन आत्मज्ञान है। यह आत्मज्ञान कर्म त्याग के अनंतर होता है। इसके विपरीत मीमांसा दर्शन के अनुसार मुमुक्षु लोगों को भी कर्म करते रहना चाहिए। वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से बंधन नहीं होता, केवल सकाम कर्म बंधन का कारण होती है। निष्काम भाव से वेद विहित कर्म करते हुए मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। अब हम मीमांसा दर्शन के कुछ दार्शनिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसे मीमांसा का अर्थ समस्या या विचारणीय विषय के यथार्थ स्वरूप का युक्तियों के द्वारा समीक्षा करना माना जाता है। मीमांसा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय धर्म है। मीमांसा का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति है। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वैदिक कर्मकांड की व्याख्या एवं पुष्टि है। मीमांसा दर्शन के दो संप्रदाय व प्रवर्तक हैं। एक भट्ट मत जिसके कि कुमारिल भट्ट हैं तथा दूसरा गुरु माता जिसके प्रवर्तक प्रभाकर हैं। मीमांसा के दो भाग निम्न प्रकार से कहे जा सकते हैं, जैसे कि पहला है पूर्व मीमांसा तथा दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी हैं तथा उत्तर मीमांसा के रचयिता महर्षि वादरायण हैं। धर्म को जानने का प्रमाण वेद है। मीमांसकों के अनुसार वेद का कोई रचयिता नहीं है। मीमांसक वेद को अपौरुषेय सिद्ध करने के लिए निम्न कुछ तर्क देते हैं, जिसमें कि पहला है वेद में किसी कर्ता का उल्लेख नहीं है। यहाँ उल्लेखित ऋषिगण वैदिक मंत्रों के दृष्टा व्याख्याता हैं किंतु कर्ता नहीं है। दूसरा है वास्तविक शब्द नित्य एवं अनादि हैं। वेद ऐसे नित्य शब्दों का समूह होने के कारण नित्य है, अतः कर्ता की अपेक्षा नहीं है। और तीसरा है अतः वेद अपौरुषेय और शब्द प्रमाण है। मीमांसा दर्शन के अनुसार ज्ञान के दो मूल भेद हैं। पहला है यथार्थ ज्ञान या प्रभा। प्रभा वह ज्ञान है जिसमें नवीनता हो, जिसके मूल में कोई दोष न हो तथा जो किसी अन्य ज्ञान से बाधित न हो। इस प्रकार के प्रभा ज्ञान के साधन या कारण को प्रमाण कहा गया है। दूसरा है अयथार्थ ज्ञान या अप्रभा, जिसके अंतर्गत स्मृति, भ्रम, तर्क और संशय इन चारों को रखा गया है। तत्पश्चात कह सकते हैं मीमांसा में ज्ञान कर्म समुच्चय मोक्ष प्राप्ति का साधन है। मीमांसा के अनुसार मोक्ष के लिए ज्ञान और कर्म का एक साथ होना आवश्यक है, यही ज्ञान कर्म समुच्चयवाद कहलाता है। मोक्ष दुखों के अभाव एवं आनंद रहित एवं नित्य अवस्था है। मोक्ष में आत्मा चैतन्य शून्य हो जाती है। मीमांसा में देवताओं का महत्व सिर्फ यह है कि इनके नाम पर होम या बलि दी जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मीमांसा दर्शन के अंतर्गत ईश्वर या देवताओं को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। मीमांसा में कर्म फल वितरण की शक्ति अपूर्व कहली जाती है। मीमांसा के अनुसार जगत और उसके विषय सत्य एवं यथार्थ हैं। मीमांसा अनेक वस्तुवादी है क्योंकि वे अनेक पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते हैं तथा उन्हें यथार्थ भी मानते हैं। मीमांसा में कार्यकरण सिद्धांत शक्तिवाद कहलाता है। अब हम मीमांसा तथा शिक्षा के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन के अनुसार कुछ उद्देश्य जो उद्घाटित किए गए हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं। पहला, मीमांसा दर्शन के अनुसार वेदों को सनातन धर्म के मूल ग्रंथ के रूप में स्वीकार करना एवं उसकी विशेषता को जानना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य प्रभा एवं अप्रभा ज्ञान में भेद करने की बुद्धि का विकास करना होना चाहिए। तीसरा, अच्छे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति की संकल्पना का ज्ञान देना इसका उद्देश्य होना चाहिए। और चौथा, शिक्षा का उद्देश्य सनातन धर्म के विषय में विद्यार्थियों को ज्ञान देना होना चाहिए। तत्पश्चात, यह दर्शन यथार्थवादी है, जगत एवं उसकी वस्तुओं को यथार्थ मानता है, अतएव विद्यार्थियों को यथार्थवादी बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मोक्ष किसे कहते हैं और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इसका ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से इन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर मीमांसा दर्शन ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वेद है। भारतीय दर्शन एवं सनातन धर्म का मूल वेद को पाठ्यक्रम का अंग बनाने की अनुशंसा की गई है। यथार्थ को स्वीकार करने वाला यह दर्शन व्यवहारिक विषयों को पाठ्यक्रम में रखने की अनुशंसा करता है। भौतिक विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि विषय पाठ्यक्रम के अंग होने चाहिए। चिकित्सा, कला, साहित्य, इंजीनियरिंग आदि विषय भी पाठ्यक्रम में रखे जाएं। ऐसा मीमांसा दर्शन के अनुसार कहा जा सकता है। तत्पश्चात वेद, दर्शन, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि उच्च उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित पाठ्यक्रम है। तत्पश्चात हम मीमांसा दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। मीमांसा दर्शन प्राचीन दर्शन है, अतः प्राचीन शिक्षण विधियाँ तर्क विधि, चर्चा विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, उदाहरण या दृष्टांत विधि आदि के प्रयोग पर बल देता है। सूत्र विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है, क्योंकि समस्त वेद सूत्रों में ही पिरोए गए हैं। इन सूत्रों के विस्तार ही वर्तमान में टीका के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वाद विवाद एक प्रचलित शिक्षण विधि रही है। एक समस्या पर समूह द्वारा या अनेक विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा करना इसके अंतर्गत आता है। अब हम चर्चा करेंगे मीमांसा दर्शन के अनुसार अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए। वास्तव में भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शनों को हम अभी तक से देखे हैं उसमें आत्म अनुशासन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विद्यार्थियों को इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें उनमें खुद ही आत्म अनुशासन विकसित हो जाए। अतः मीमांसा दर्शन भी आत्म अनुशासन को ही सर्वोत्तम गुण मानता है। विद्यार्थी जब जिज्ञासु एवं ज्ञान पिपासु होता है तभी वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है, और ऐसा विद्यार्थी आत्म अनुशासित होता है। इसमें अब हम अगर शिक्षार्थी की बात करें तो निश्चित रूप से मीमांसा दर्शन शिक्षार्थी को व्यवहारिक ज्ञान और पराज्ञान दोनों ज्ञान देने की बात करता है, क्योंकि अगर विद्यार्थी समाज में अपने को स्थापित करना चाहता है या दैनिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाना चाहता है, अपने दैनिक जीवन को, अपने सामाजिक और व्यवहारिक जीवन को, तो निश्चित रूप से उसमें व्यवहारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। अतः मीमांसा दर्शन शिक्षार्थी में व्यवहारिक ज्ञान को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही अगर वह विद्यार्थी उच्च शिक्षण या उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में रुचि रखता है तब उसे उच्च ज्ञान की तरफ या उच्च उद्देश्यों की तरफ प्रेरित करते हैं और उससे संबंधित पाठ्यक्रम को, उससे संबंधित विषयों को अध्ययन करने की बात कहते हैं। ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को दोनों ज्ञान प्रदान किया जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति की बुद्धि या व्यक्तित्व एक प्रकार का हो और वो एक जैसा ज्ञान ग्रहण करना चाहे। तो निश्चित रूप से जिस तरह का व्यक्ति छात्र या बालक अपनी व्यक्तित्व और बुद्धि रखता है उसको उसके अनुसार ही शिक्षित करना इस दर्शन का महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।
आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य